समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और आज मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
इलेक्शन कैंपेन हिटिंग अप इन पोल बाउंड स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड महाराष्ट्र। टॉप लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज होल्डिंग मल्टीपल रैलीज एंड रोड शोज।
43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू।
वोटिंग कंक्लूड्स इन श्रीलंका फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Diabetes Day. So, hello listeners, today is number 14th and we are dedicating this program to raise awareness about diabetes, a global health challenge affecting millions of people. And this year, the theme for World Diabetes Day, which runs through to 2026, is Diabetes and Well-being. Together, we'll explore what this means and how we can support a healthier life for everyone impacted by diabetes. So, Mukesh, let's start with some facts.
Bilkul.
Diabetes is one of the most common chronic illnesses worldwide. In 2014, an estimated 422 million adults were living with diabetes, compared to just 108 million in 1980. That's almost a fourfold increase in less than 4 decades. And today, the global prevalence of diabetes in adults has nearly doubled since 1980 and is growing fastest in low and middle income countries where access to healthcare can be more limited. And to give our listeners a bit of a background, diabetes occurs when the pancreas doesn't produce enough insulin or when the body can't effectively use the insulin it does produce. Insulin is essential because it helps regulate blood sugar levels, and without enough insulin or the ability to use it properly, blood sugar levels rise, a condition known as hyperglycemia, which can lead to serious health problems over time.
बिल्कुल, तो आइए आपको बताते हैं इस बारे में कि मधुमेह के 3 प्रकार हैं और प्रत्येक के अपने विशिष्ट कारण और विशेषताएं हैं। अगर हम पहले कारण की बात करें, टाइप 1 मधुमेह की बात करें, तो जिसे अक्सर इंसुलिन पर निर्भरता या बचपन से शुरू होने वाला मधुमेह कहा जाता है, इंसुलिन उत्पादन की कमी इसकी विशेषता है। यह आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में पाई जाती है और इसके लिए आजीवन इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है। टाइप 2 की बात करें तो इसे गैर इंसुलिन निर्भर या वयस्क शुरुआत मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। सबसे आम प्रकार है और यह आमतौर पर शरीर द्वारा इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है और यह अक्सर मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे जीवन शैली से जुड़े कारकों के कारण होता है। स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव के साथ इस प्रकार के मधुमेह को अक्सर नियंत्रित किया जा सकता है और कभी कभी इसे समाप्त भी किया जा सकता है। और गर्भकालीन मधुमेह गर्भावस्था के दौरान होती है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद ये ठीक हो जाती है। हालांकि जो महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, उन्हें जीवन में बाद में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का अधिक खतरा होता है और मधुमेह का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव हो सकता है यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए, और इससे अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल के दौरे, स्ट्रोक और यहां तक कि निचले अंग के काम करना बंद हो जाता है और यही एक प्रमुख कारण है। हर दिन मधुमेह वाले लोगों को अक्सर आहार, शारीरिक गतिविधि और कभी कभी दवा के संयोजन के माध्यम से अपने ब्लड शुगर के स्तर का प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ इन जटिलताओं से अक्सर बचा जा सकता है। तो अभिषेक, जो ये मधुमेह की बीमारी है, आम तौर पर जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, वैसे कोई बीमारी नहीं है। एक तो तनाव हमारे लोगों की जो आमतौर पर जो जीवन शैली बन गई है, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं, ज्यादातर हम या तो कार से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, पैदल चलना लगभग कम हो गया है, और इस कमी के कारण हमारी शरीर गतिविधि नहीं हो पाती और पूरा बॉडी मूवमेंट नहीं होता, और शायद इसी के कारण। दूसरा, तनाव बहुत बढ़ रहा है कि आम तौर पर लोगों में तनाव इतना अधिक है कि उसका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पड़ता है और डायबिटीज जो है वो हम लोग हो रही है।
Absolutely, and I'd like to mention here, Mukesh, that it's very important to have a work-life balance, and like you're mentioning about a stress, and it's very important to lead a stress-free life and indulge in, I think everyone should take time out and indulge in some self-care, you know, take time out to properly heal your, stay away from stress and tension and other activities that lead to hypertension. So diabetes symptoms can appear suddenly, though in type 2 diabetes they may develop gradually, sometimes taking years to notice. And typical signs include increased thirst, frequent urination, blood vision, fatigue, and unexplained weight loss. And if untreated, diabetes can damage blood vessels and critical organs like the heart, eyes, kidneys, and nerves. It raises the risk for severe health issues, including heart attacks, strokes, kidney failure, and in some cases permanent vision loss due to damaged retinal blood vessels. Diabetes can also lead to nerve damage and poor circulation in the feet, resulting in ulcers and potential amputations. And like Mukesh was saying, it's very important to do some form of physical activity. Do not lead a sedentary lifestyle. Move around, try as much as possible to move around, walk a block, take 10 minutes out or half an hour to at least walk every day.
बिल्कुल, और इस रोग से बचाव के लिए सुबह की सैर जो है वो सबसे ज्यादा कामयाब रहती है, और अगर सवेरे के समय, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रहती है और वो हमारे फेफड़ों में जाएगी, पूरे बॉडी में जाएगी, तो निश्चित तौर पर उससे काफी लाभ होता है। इसके अलावा
वन थिंग आई लाइक टू मेंशन हियर मुकेश, इज नॉट इन दिस काइंड ऑफ वेदर,
इस समय बिल्कुल हमें बचना है क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, उससे हमें बचना है। लेकिन इसका जो उपचार है, इसके अलावा अगर हम घर के अंदर योग और प्राणायाम भी करें तो उससे भी काफी हमें मदद मिल सकती है।
Yes, and this year's theme is diabetes and well-being, is about focusing on the full picture of living with diabetes. Living with diabetes isn't just about managing blood sugar, it's about emotional resilience, mental health and quality of life. And millions of people with diabetes face daily challenges in managing their condition, whether at home, at work or in school.
बिल्कुल, सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और इस वैश्विक पहल का उद्देश्य दुनिया भर के देशों को ऐसी नीतियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो मधुमेह की रोकथाम, उपचार और देखभाल का समर्थन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुधारने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया है। और अगर हम कल्पना करें कि ब्लड शुगर की निगरानी करते समय आप क्या खाते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने तनाव के स्तर के बारे में लगातार जागरूक रहते हैं, इसके लिए संगठन, आत्म अनुशासन और लचीलेपन की आवश्यकता है। इसके प्रभाव से चिंता, तनाव और कभी कभी अवसाद भी हो सकता है। आइए इस बात पर चर्चा करें कि मधुमेह को रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं।
सो लेट्स फर्स्ट लिसन टू डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक झिंगन ऑन डायबिटीज प्रिवेंशन।
आजकल हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव, खान पान में बदलाव, आरामप्रद जिंदगी और इसके साथ साथ मानसिक तनाव। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हमको अपने स्वास्थ्य पर ख्याल देना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। 5-7% वेट कम करने से हम डायबिटीज को रोक भी सकते हैं, और इसको अगर होने वाली है तो उसको टाल भी सकते हैं। अगर इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी जिंदगी जीत सकते हैं।
Yeah, so we heard the doctor giving us very useful advice. And Mukesh, the three key actions are eat healthy, stay active, avoid tobacco use. And a balanced diet that's low in sugars and processed foods, regular physical activity and avoiding smoking can dramatically lower your risk of developing type 2 diabetes. And for those already living with diabetes, these lifestyle choices can improve blood sugar control and boost overall well-being. And let's also remember that people living with diabetes need support from family, friends and the community. And diabetes management is a daily, sometimes hourly responsibility. एंड हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम कैन मेक अ बिग डिफरेंस।
बिल्कुल, निरंतर देखभाल और प्रबंधन से मधुमेह के कई गंभीर परिणामों पर रोक लगाई जा सकती है। और मधुमेह के उपचार के लिए जानते हैं कि सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारी पहल की हैं। तो क्या पहल हैं अभिषेक?
The government of India has launched several proactive measures, like Mukesh is saying, to tackle diabetes as part of the broader national program for prevention and control of non-communicable diseases under the National Health Mission. And the government of India under the NPNCD provides technical and financial assistance to states and UTs through the National Health Mission. Support is allocated based on state and UT proposals with focus on prevention and management of diabetes and other non-communicable diseases. 743 districts, NCD clinics and 6,237 community health centers, NCD clinics have been established across India to ensure local level care and accessible services. Then there's emphasis on training healthcare personnel, strengthening healthcare infrastructure and facilitating early diagnosis and referral, and implemented a population-based initiative that offers screening and control for common NCDs like diabetes, hypertension and certain cancers. Targeting individuals over 30, screenings are a core part of the healthcare services provided at Ayushman Arogya Mandirs, and a range of media including print, electronic and social platforms is used to ensure consistent community awareness and education. And of course, the Fit India movement led by the Ministry of Youth Affairs and Sports and yoga programs from the Ministry of Ayush encourage active and healthy lifestyles. So listeners, if you're looking to make a difference, volunteer, spread awareness and support policies that make diabetes care accessible to all. Stay healthy, stay informed and take care of one another.
और श्रोताओं, अब समय आ चुका है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में अभिषेक, सबसे पहले उत्तराखंड चलें।
ऑफ कोर्स,
उत्तराखंड का 24वां राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। मुख्य समारोह देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उत्तराखंड के लोगों को एक वीडियो संदेश के जरिए बधाई दी है। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता संजीव सुंदरियाल के पास।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास पर जोर दिया। श्री धामी ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई नीति बनाने और वर्ष 2030 तक राज्य के 50 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के 25वें वर्ष में प्रवेश का जिक्र करते हुए लोगों से अगले 25 वर्षों तक राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के अगले 25 वर्षों यह यात्रा एक बहुत बड़ा संयोग है, क्योंकि भारत भी अपने 25 वर्ष की अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं से नौ आग्रह भी किए। उन्होंने देवभूमि की बोलियों को संरक्षित करने और उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया।
आपकी बोलियां काफी समृद्ध, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2026 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना को पूरा करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे विकास से प्लान पर भी लगाम लगी है। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष समारोह की श्रृंखला में हरिद्वार और उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर रंगोली और भव्य दीप सजाए गए। इसके अलावा उत्तरकाशी के जोशियाड़ा झील के वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए युवाओं ने काइकिंग और राफ्टिंग में अपने हुनर का प्रदर्शन किया और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जिले और राज्य की सशक्त उपस्थिति को उजागर किया। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संजीव सुंदरियाल।
The UGC Southern Zone Conference for Autonomous Colleges on Implementation of New Education Policy began at IIT Madras today. Addressing the heads of the institutions, UGC Chairman Jagdish Kumar appealed to all the higher education institutions to increase awareness of the Prime Minister's Vidya Lakshmi scheme, which is a guarantor-free, collateral-free loan scheme for the students. He said that all the relevant information for the students are available in the Utsav portal of the UGC. He said that the new education policy will transform the life of students and equip them with not only knowledge but also the needed skills. We have more from a correspondent, Joy.
The heads of the autonomous institutions of the southern zone will discuss the challenges to implement the new education policy in their respectable institutions and also find ways and means of implementing it with a futuristic approach so that students with different cognitive abilities can achieve to the maximum. The call is also to offer higher education in Indian languages with also teaching English as a communication tool to increase competency to enable them work in a global environment. UGC is also working with IIT to achieve the same goal. Another objective is to provide skill education as part of the degree programs and also the introduction of micro-credentials and skill-based courses as part of the program. This will also open up areas like finance, insurance, logistics and management, media and entertainment for children to study. The perspective with regard to evaluation methods and experiential learning will also be part of the curriculum and also provide a free and fair support system to the students hailing from weaker sections of the society. The heads of the institutions will also have a one-hour interaction with the chairman of the UGC. जॉय आकाशवाणी चेन्नई।
और अब चलते हैं सिक्किम। सिक्किम के राज्यपाल ने 15 चुंगथांग ग्राम पंचायत इकाई को गोद लिया है, तो इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने पिछले कुछ दिनों पूर्व मगन जिले दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाका चुंगथांग का दौरा किया था, जिसके अंतर्गत हाल ही में सिक्किम राजभवन में एक विशेष प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्किम के राज्यपाल द्वारा 15 चुंगथांग जीपीयू को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण घटकों पर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव जे डी भुटिया, जिला कलेक्टर मगन अनंत जैन, पंचायत अध्यक्ष डीकी लेप्चा, एसपी, अन्य पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण वर्ग उपस्थित रहे। चुंगथांग पंचायत अध्यक्ष डीकी लेप्चा द्वारा प्रस्तुति की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्किम में एक गतिशील और सक्षम राज्यपाल की नियुक्ति करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्यपाल के प्रति महान दूरदर्शिता अपनाते हुए चुंगथांग जीपीयू को अपनाने के लिए समुचित जीपीयू की ओर से धन्यवाद किया। इस दौरान सम्मान के प्रतीक के रूप में टीम ने राज्यपाल को थोकरो अर्थात लेप्चा पारंपरिक कोट भेंट किया और खदा तथा अन्य पारंपरिक और सांस्कृतिक वस्तुएं भी भेंट की। डीकी लेप्चा ने अपनी प्रस्तुति में चुंगथांग में अक्सर होने वाले भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर प्रकाश डाला। इस मध्य उन्होंने कई मांगे राज्यपाल के समक्ष रखी, जिनमें से विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली, वैकल्पिक राजमार्ग का प्रस्ताव, तिस्ता एचईपी स्टेज 3 1200 मेगावाट परियोजना की बहाली, भारतमाला परियोजना और अन्य लंबित प्रस्ताव, पुष्पकृत और बागवाणी की स्थापना आदि पर प्रकाश डाला। परिक्रमा के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
और सिक्किम से वापस आते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है, तो अभिषेक बताएं क्या कुछ खास रहा आज।
यस मुकेश, द बसलिंग हॉल्स ऑफ भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली आर वंस अगेन अलाइव विद द एनर्जी ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड ग्लोबल एक्सचेंज एज द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF ऑफिशियली ओपन्ड इट्स डोर्स एंड द 14-day फेस्टिवल वाज ऑफिशियली ओपन टुडे बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। 11 countries are taking part in this international exhibition this year, including China, Egypt, Iran, South Korea, Thailand, and the United Arab Emirates. And the theme for this year is Viksit Bharat at 2047. And this edition's partner states are Uttar Pradesh and Bihar, while Jharkhand is the focused state. So that is all about the 43rd in India International Trade Fair. And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Marathwada public leader Anantrao Bhale Rao was born on 14th of November 1918 in Aurangabad, Maharashtra, fondly known as Anna. He was a journalist who lived a valued life. He jumped into the Hyderabad liberation struggle movement at a young age, for which he was imprisoned.
In 1944, he started an agitation against the Nizam government's compulsion to recover levies. Anant Rao, along with Vaghmare, edited the newspaper Marathwada. Anant Rao took the role of protecting the rights of the people by presenting the complaints of the people in the Marathwada newspaper and exposing the injustice done to them.
The paper was banned in the state of Hyderabad. On 15th of August 1947, a call was made to carry out Satyagraha by hoisting tricolour flags in homes and public places. This led to a scuffle with the Nizam's armed police.
Anant Rao had led all these battles. With the ending of Nizam's rule in 1948, Marathwada was relaunched. Anna, also had to go to the Nasik jail once again during the emergency in 1975. Anant Rao died on the 26th of October, 1995. He's remembered as a great public leader and nationalist journalist even today.
November 14th is also the birth anniversary of Pilu Modi. Modi was an architect and politician and one of the founding members of the Swatantra Party. He was educated at the Dune School, Dehradun, and the University of California, Berkeley, from where he graduated with a master's degree in architecture.
In political life, Modi was an advocate of liberalism and freedom. In 1967, he was elected to the 4th Lok Sabha, representing the Godhra constituency in Gujarat. In 1971, he was re-elected and served in the 5th Lok Sabha until March 1977. In 1975, at the time of the emergency in India, Modi was imprisoned. On the 10th of April 1978, Modi was elected to the Rajya Sabha and served there until his death in 1983.
और कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेल गतिविधियों पर नजर डालने के, तो खेल जगत की जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं शशांक. शशांक, कहां से शुरू कर रहे हैं खेल की जानकारी में?
सीधे शुरुआत करते हैं मुकेश बिहार के राजगीर से, जहां एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला बस अब से कुछ देर बाद थाईलैंड से होगा. इससे पहले अगर हम देखें तो भारत ने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से और दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराया था. इससे पहले आज के मैच की बात करें तो चीन ने जापान को 2-1 से और मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को ही 2-1 से ही हराया. अंक तालिका में चीन जो है वो 3 जीत के साथ शीर्ष स्थान पर है, भारत 2 जीत के साथ दूसरे और मलेशिया तीसरे स्थान पर है. इस बीच दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज सुबह कुमामोटो मास्टर जापान बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा की मिशेल ली से हार गईं. सिंधु ने कल थाईलैंड की बुसानन को पहले मैच में हराया था. लक्ष्य सेन भी पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गए. महिलाओं के डबल्स मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारत की चुनौती समाप्त हो गई. उधर सेंचुरियन में कल तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जो है श्रृंखला में बढ़त बना ली है. 220 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट पर 208 रन ही बना सकी. अर्शदीप ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए. इससे पहले भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाए. प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा ने 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 56 गेंद में नाबाद 107 रन की पारी खेली. श्रृंखला का चौथा और आखिरी मैच कल जोहानसबर्ग के वांडर्स स्टेडियम्स में खेला जाएगा. तो खेल खबरों में फिलहाल इतना ही.
यस, थैंक यू शशांक फॉर द स्पोर्ट्स राउंडअप. एंड इन सम बिजनेस न्यूज़ टुडे, डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी एंड सेंसेक्स एंडेड लोअर फॉर द 6th कंसेक्यूटिव सेशन टुडे. डिस्पाइट अ पॉजिटिव स्टार्ट, इंडियन मार्केट्स वर अनएबल टू होल्ड देयर अर्ली गेन्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम वीक ग्लोबल ट्रेंड्स, अ राइजिंग डॉलर इंडेक्स एंड कंटिन्यूड फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग. एट क्लोज द सेंसेक्स वाज डाउन 110 पॉइंट्स ऑफ 0.14% एट 77,580, and the Nifty was down 26 points or 0.11% to 23,532 a short while ago.
और कार्यक्रम में वक्त हो चला है उन महान व्यक्तियों के बारे में जानने का जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान रहे सीके नायडू, जिनका पूरा नाम है कोटारी कंकैया नायडू. सीके नायडू उस उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे जिसके बारे में सोचना भी आज के खिलाड़ियों के लिए दिवा स्वप्न हो जाता है. नायडू की उस समय की फिटनेस आज के उन खिलाड़ियों के लिए एक सबक है जो दूसरे तीसरे मैच के बाद ही चोटिल हो जाते हैं. 37 साल की उम्र में जब आज खिलाड़ी रिटायर होने लगते हैं तब सीके नायडू ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था और वो 68 साल तक फिट होकर क्रिकेट खेलते रहे.
एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1977. ही वाज अ स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस टीचर फ्रॉम इंडिया हु स्प्रेड द हरे कृष्णा मंत्रा एंड द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द वर्ल्ड. Born as Abhay Charan De or simply Prabhupada, to carry out an order received in his youth from his spiritual teacher to spread Krishna consciousness in English in his old age at 69, he journeyed in 1965 from Kolkata to New York City on a cargo ship, taking with him little more than a few trunks of books. He knew no one in America, but he chanted Hare Krishna in a park in New York City, gave classes, and in 1966, with the help of some early students, established the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, which now has centers throughout the world.
बिल्कुल, और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक हरिकृष्ण देवसरे की। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उनकी लगभग 300 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका पराग के लगभग 10 साल तक संपादक भी रहे।
Travis London Barker was born on this day in 1975. He's an American musician who serves as a drummer for the rock band Blink-182. He has collaborated with hip-hop artists, is a member of rap rock group Transplants and co-founded the rock band Plus 44. And due to his fame, Rolling Stones referred to him as a punk first superstar drummer, as well as one of the 100 greatest drummers of all time. Let's listen in to his hit track, Superman, and it's from his 1997 album, Hang Ups.
और आज ही पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद जैन की। इनके माता पिता दोनों सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा था। राष्ट्रीय भावनाओं की बुनियाद को लेकर लक्ष्मी चंद जैन की कुछ स्मृतियां और संस्मरण बेहद रोचक हैं। 1947 के अंतिम दिनों में उनकी भेंट एक कैंप में कमला देवी चट्टोपाध्याय से हुई थी, और उसके बाद सन 1948 में जैन ने कमला देवी के साथ इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की थी।
Bharathan was born on this day in 1946. He was an Indian filmmaker, artist and art director. Bharathan is noted for being the founder of a new school of filmmaking in Malayalam cinema, along with Padma Rajan and K.G. George in the 1980s, which created films that were widely received while also being critically acclaimed. A train of directors and screenwriters followed the school onto the 1990s, including C.B. Malayil, Kamal, Lohit Das and Jayaraj.
और आज ही पुण्यतिथि है संस्कृत भाषा के विद्वान और महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार सत्यव्रत शास्त्री की। वे तीन महाकाव्यों के रचनाकार हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 1000 श्लोक हैं। और वर्ष 2007 में सत्यव्रत शास्त्री को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारतीय मूल के अमरीकी प्लास्टिक सर्जन और द इंडिया प्रोजेक्ट के संस्थापक शरद कुमार दीक्षित की भी आज पुण्यतिथि है। आपने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी के मुफ्त इलाज के लिए एक पहल की थी।
Yes, and Jawaharlal Nehru was born on this day in 1989, and in a social media post, PM Narendra Modi paid tribute to the former Prime Minister. And also, Birbal Sahni was born on this day in 1891. He was an Indian paleobotanist who studied the fossils of the Indian subcontinent. He also took an interest in geology and archaeology. He founded what is now known as the Birbal Sahni Institute of Paleobotany in Lucknow in 1946.
और असमिया साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर इंदिरा रायसम गोस्वामी की आज जयंती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इंदिरा गोस्वामी ने असम के चरमपंथी संगठन उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक पहल उन्होंने शुरू की थी।
Yes, and Yanni was born on this day in 1954. He's a Greek composer, keyboardist, pianist and music producer. Yanni continues to use the musical shorthand that he developed as a child, blending jazz, classical, soft rock and world music to create predominantly instrumental works. Let's listen into his hit composition, Nostalgia, and it's from his album, Reflections of Passion.
और अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली मराठी सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का आज की जयंती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। बेघर बच्चों की देखरेख करने वाली सिंधुताई के लिए कहा जाता है कि उनके 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजारी थी। और इसके अलावा आज जन्मदिन है, किसका बताएं, पंजाब से आने वाले भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर की आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने 2022 में 96 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेलों का पदक अपने नाम किया था।
Yes, and also Oscar Claude Monet was born on this day in 1840. He was a French painter and founder of Impressionism painting, who is seen as a key precursor to modernism, especially in his attempts to paint nature as he perceived it.
बिल्कुल, और अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से इजाजत लेने का, तो मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।